आइए पारे पे चलते हैं। पिछले पारे से रब्त, पिछले पारे की आखिरी आयात में हजरत यूसुफ पर लगा हुआ इल्ज़ाम धुल गया। ख़वातीन ने भरी अदालत में मजमे के सामने इकरार किया कि कसूर मेरा ही था और यूसुफ सच्चे हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चूंकि आगे अल्लाह के दीन का काम करना था, इसलिए अपने ऊपर लगे हुए दाग धब्बे धुलवाने के लिए पहली दफ़ा जेल से निकलने से इनकार कर दिया ताकि इज्जत से जाऊं और इज्जत से काम करूं। अब उसी में से अब अगला हिस्सा इस बारे में वमा उबर्रियु से आएगा। सलफ सालीन का इख्तलाफ तो है कि ये कॉल अजीज़ मिस्र की बीवी का है या हजरत यूसुफ का है, लेकिन जिसमें डोमिनेंट राय और मजमून देखकर और इस आयत की खूबसूरती देखकर पता चलता है कि इतना प्यारा कलाम किसी नबी का हो सकता है। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात कही थी, इससे ये पारा शुरू होता है। पारे के थीम को जरा सा समझ लेते हैं। नफ्स की शरारतें, इसका इलाज खुद को रब के हाथों में डाल दो। लिखिए, एक जुमला लिखिए, इत्तफाकात नहीं तदबीरे रब्बी। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है और अमूमन हम ये सोच लेते हैं कि इत्तफाकन हो रहा है, आज इत्तफाकन ऐसे हो गया, मैं ऐसी जगह से गुजर रही थी, फिर मैंने लोगों को देखा, फिर मैं गई, मैं इत्तफाकन उम्रे पे आ गई, फिर मेरे नसीब में ये दौरे कुरान आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आजकल दिन रात मुख्तलिफ बातें सुन रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि इस साल पूरे मिलने वाले ग्लोबली और फैमिली का कह लीजिए या फिर स्टूडेंट्स या एडमिट्स किस मुल्क में से कौन आ रहा है वो मुझे पता चल रहा है। जब फ़ोन खोलती हूँ ना तो मेरे फ़ोन में मोहब्बत भरे मैसेज होते हैं, हम आ रहे हैं आपसे कैसे मिले। तो अब वाकई मेरे लिए मक्का तो मैका है और मैं किसी को नो नहीं कहती, वल्लाही मेरा दिल ही इतना छोटा है कि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ सकती। मैं जानती भी नहीं, हमारे एडमिन्स के मैसेज आ जाते हैं कि फ़लाँ नंबर मांग रहा है, फ़लाँ रब्ता, मगर दे दें, मुझे क्या इतराज़ है। जो इतनी प्यारी किताब सुन रहे हैं उनका तो हक है, और जगह भी एक बना ली कि अच्छा भी वहाँ मिलना है तो इस वक्त पे मिल लिया करें ना। तो मुझे वाकई अब मक्का मैका लगता है। हर एक जगह लोग नहीं भी आ पाते, जो आ रहे होते हैं उनकी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आपकी तो जगह ही ना बचे इधर अगर बाहर के लोग भी आने लगे। आप बहुत खुशकिस्मत है जिनको अल्लाह ने इन जगहों पर बिठाया हुआ है। क्यों? इसलिए कि ये भी नसीब होता है। अब आप कहें कि इत्तफाकन ये सब हो गया, तो ये इत्तफाकन नहीं हुआ, ये जद्दा का दारे कुरान इत्तफाकन नहीं है। लिखिए, मैं आपको दिल खोल के कहने वाली हूँ ये बात, ये अल्लाह का प्लान है, था, है, और अल्लाह ने इसके पीछे क्या रखा हुआ है ये आप मैं नहीं जानते। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की ये सारी कहानी पढ़ते सुनने के दौरान अपने दिल को इस पे जमा लीजिएगा कि अल्लाह ताला ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात से हमें गुजारते हैं, हमारी औलादों को गुजारेंगे, वक्त के साथ उनको भी तजर्बे करने पड़ेंगे। आप अपनी ज़िंदगी पीछे से शुरू करके देख लें, बचपन से जवानी बहुत कुछ हुआ होगा आपके साथ, उसके पीछे अल्लाह की कोई हिकमत थी। दूसरा असूल इस पारे के बीच में साथ ही लिख लीजिए कि हर आजमाइश के बाद ज़रूर बस ज़रूर खैर आती है। मैंने इतनी शिद्दत से कभी बात नहीं की जैसे कर रही हूँ ताकि आपके दिल खुल जाए। अगर आप इस वक्त किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं, बीमारी से, परेशानी से, सदमे से, औलाद के गम से या घर से या फलां से, तो दिल ठंडा कर लीजिए, इसमें खैर आएगी, लेकिन शर्त है। अब वो शर्त ही तो निपटी नहीं हमसे। फला तब तईस, गम ना कीजिए। आप जरा हजरत यूसुफ और आज भाइयों की बातें पढ़े, ये सारी बातें आपको मैं बीच में देती रहूंगी। पारे पूरे में आज हम इंशाल्लाह आयत 53 से यूसुफ अलैहिस्सलाम की तवाज़ो देखेंगे। ये जो चंद मिनट होते हैं ना, एक दो मिनट, इसमें आपको पूरे पारे का मैं आपको जिस्ट दे रही हूँ। आयत 53 में हजरत यूसुफ की तवाज़ो दिखेगी, आयत 55 में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को हुकूमत ऑफ़र हो रही है, यानी मिनिस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं हज़रत यूसुफ़ आज की ज़ुबान में। फिर आयत 58 से ऑनवर्ड बिरादरान ने यूसुफ़ का मिस्र में पहली दफ़ा दाखिला आप देखेंगे। फिर आगे बिन जमीन को मिस्र जाने की दरख्वास्त की जाएगी। फिर आगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तदबीर आएगी, 67 में है ये। फिर 69 में बिरादरान ने यूसुफ का दूसरी दफ़ा मिस्र में जाना हम देखेंगे। फिर इसी तरह 78 आयत में बिरादरान ने यूसुफ की हज़रत यूसुफ से दर्द मंदाना इल्तजा है। कि इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। फिर आयत नंबर 80 में बिरादरान की मायूसी और आपस के मशवरे हैं, और आयत 83 में हज़रत यूसुफ का जवाब सब्र जमील की बात है। फिर इसके बाद आयत 88 में बिरादरान का मिस्र में तीसरी दफ़ा दाखिला होगा, और आयत 93 से ख़ानदान को मिस्र में लाने का हुक्म, और 99 में चौथी दफ़ा ये भाई मिस्र में जाएंगे, और उसके बाद फिर सूरत के एंड 1 और 2 के करीब ख़ातिमुल अंबिया की नबूवत पर दलील है, और आयत 111 जो बिल्कुल एंड है, कुरान पाक मुस्तदिक है, तस्दीक करता है, वलाकिन तस्दीक अल्लज़ी बैन यदई, यानी वो वाक़यात जो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में ना हुए ना अरबों को पता थे, वो आपकी ज़ुबान से किस्से और कहानी की तरह जो सच्ची है जारी हो जाना इस बात की दलील है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी भी हैं और रसूल भी हैं, और अल्लाह की ताईद इनके साथ है। इसके बाद इस बारे में सूरत रात आएगी। सूरत रात में कायनात की निशानी है, किसी कौम का तो तذکرہ नहीं है, लेकिन कौमों के अरूज और जवाल में जो खूबियां काउंट होती हैं ना वो हैं। बड़ी प्यारी आयत है, इसमें वो आज शेर भी आएगा, इन अल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम। उर्दू बोलने वाले समझ भी गए होंगे क्या इस सूरत में इस्लाम के बुनियादी अकायद तौहीद रिसालत और कियामत भी हैं, और इन पर होने वाले इतराजात के जवाबात भी हैं। आयत एक ही नंबर 1 आयत हुज्जियत हदीस से मुतल्लिक है कि लोग कुरान को मानते हैं हदीस को नहीं मानते, तो हुज्जियत हदीस अल्लाह ने बयान कर दी। फिर आयत नंबर 2 में कुदरत बारी ताला की निशानी है, आयत 11 में फरिश्तों की जिम्मेदारियां हैं, और फिर जो पारे के थीम का दूसरा पिलर इस वक्त आज हम लेंगे, आज हक और बातिल की कश्मकश, ये आपको आयत नंबर 17 में दिखेगी सूरत रात में। बड़ी प्यारी आयत है, अगर वक्त में गुंजाइश हुई तो बात करेंगे इस पे। फिर आयत 20 में मुत्तकीन के औसाफ हैं, फिर आयत 27 में कुफार के कुछ मुतालिबात हैं, और आयत 33 सूरत के एंड तक तसल्ली खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप इस बारे को पढ़ते हुए ज़रूर नबी सल्लम के दिल को महसूस कीजिएगा, कचोके बढ़ते हैं, ये काम करना कोई आसान है? आपको दूर से बहुत कुछ चमकता दमकता दिखता होगा, फलां स्कॉलर है, वो इतना पढ़ा रहा, वो उधर है, आपको वर्ल्ड लेवल के कितने स्कॉलर्स इंग्लिश के दिखेंगे। मेरे इर्द गिर्द काफ़ी लिस्टों में हर इस लैंग्वेज के होते हैं, लेकिन इंग्लिश उर्दू अरबी के भी होते हैं ना, तो कई लोग रश कर रहे होते हैं ना, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में यूथ यंगस्टर्स को पसंद करती है ना, तो आपको भी कई नाम पता होंगे ना। आप यकीन कीजिए कि अगर कोई अल्लाह के लिए खड़ा हुआ है ना और लोगों को खैर दे रहा है ना, तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है। ये मैं ऐसे समझा सकती हूँ कि छोटी सी रोड पे आप गाड़ी चलाते रहे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हादसे का भी डर नहीं होता, कोई आपको पकड़ेगा भी नहीं, लेकिन जब आप हाईवे पे गाड़ी चला लेते हैं ना तो फिर हाथ पांव पड़ते हैं, हाय कहाँ गए। ये जो शोहरत होती है, या जब फैज आम होने लगता है ना, तो शैतान फिर शोशे उठाता है। प्यारे नबी को जितना दुख दिया गया, ये जो पारे ना 13वां और 14वां, कल इंशाल्लाह सूरह हिजर पढ़ते हुए रोए हैं आप, क्योंकि हमने कुरान सीखा ही नहीं है ना, हमें तो बस पता है जल्दी तर्जुमा पढ़ाओ, खत्म करो जी, जल्दी करो, आप मौलवी साहब भी पता नहीं इतनी लंबी तरावी पढ़ा रहे हैं, ये है वो है, पारा ही नहीं खत्म हो रहा। हमने ऐसा कुरान पढ़ा, अल्लाह सूरत रात के आखिर में नबी को जो तसलियां देते हैं, यकीन करें आप रो पढ़ेंगे अगर आपको वाकई फील हो अल्लाह के नबी का दर्द। फिर आगे सूरत इब्राहिम आएगी, मैंने आपको शुरू में उंगलियों पर गिन के बताया था, सूरत यूनुस, हूद, यूसुफ और इब्राहिम, चार सूरतें नबियों के नाम पे, पांचवी आगे आएगी मोहम्मद और छठी आएगी सूरत नूह, छह नबियों के नाम पे कुरान में सूरतें हैं। तो सूरत इब्राहिम मैं पढ़ाने के लिए बड़ी बेचैन हूँ, क्योंकि इसी में वो सारी खूबसूरत दुआएं भी आ रही हैं जो हज़रत इब्राहिम ने इस घर को बनाते हुए मांगी थी, और इसी तरह से इस सूरत के बिल्कुल शुरू में नज़ूले कुरान की हिकमत, जिसके बारे में अक्सर मैं एक जुमला बोलती हूँ कि पूरा कुरान अगर कुरान की अहमियत के बारे में कुछ ना कहे और सिर्फ पहली आयत सूरत इब्राहिम की आ जाए, तो मकसद नज़ूले कुरान समझ आ जाता है। किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुख्रिजन्नास मिनज़ुलुमाति इलन्नूर, ये किताब लोगों को अंधेरों से रोशनियों में लाती है, और यही हमारे प्लेटफॉर्म नूरुल कुरान का मकसद भी है, एनलाइटन द हार्ट्स विद द नूर ऑफ अल कुरान, इसी आयत को थीम बना ले। कि लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनियां बिलाते हैं, लेकिन कैसे? भेजनी रब्बी है, इला सिरात अजीज अल हमीद। तो ये आयत यहाँ आएगी। फिर कुरान अरबी में क्यों नाजिल हुआ, इस पे बात है आगे शुरू की आयतों में। फिर शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं, आयत 7, वाइजन रबुकुम लाइन शकर तुम लजीदन्नकुम। और फिर आपकी भी और मेरी भी फेवरेट मोस्ट आयत, कलमे तैयबा और कलमे खबीसा की मिसाल आपको यहाँ एक फ्लो चार्ट दिखाएंगे आज इंशाल्लाह, कि जिससे आपको समझ आने लगेगा कि अलम तरा कई फदरबल्लाहु मसलन में अल्लाह ने कलमे तैयबा को क्यों पेश किया एक मोमिन के तौर पे। और उसके बाद फिर आए 35 से काफ़ी आगे तवील, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इल्तिजाएं और उनकी मनाजातें हैं, उनकी वो दुआएं हैं जो औलाद के लिए मांग रहे हैं, और इसी तरह से बहुत कुछ है। तो ये है आज का पारा, इसमें इंशाल्लाह जहाँ मौका आएगा वहाँ हम नबी के अखलाक को भी देखेंगे। आइए अब पारे की आयतों के साथ जाते हैं, और अब इसके बाद कोई वजाहत ना भी हो तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। वमा उबर्रियु नफ्सी नफ्सलाम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहम रब्बी इन रब्बी गफूरुर रहीम। मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला ही है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे, यकीनन मेरा रब पालने वाला, बड़ी बख्शिश करने वाला और बहुत मेहरबानी फरमाने वाला है। ये है जी पारे का आगाज़, नफ्स के उरूज और जवाल। नफ्स की तीन हालतें होती हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमईना। अपनी असल के एतबार से नफ्स अम्मारा है, बुराई की दावत देता है। अम्मार किसको कहते हैं? आमरियत क्या होती है? सबको आता, डिक्टेटरशिप, सिर्फ मेरी मानो, मैं जो कहता हूँ वो करो। नफ्स बहुत मैं करता है। और आप नोट कीजिए, दिन में आप कितनी दफा लफ्ज़ मैं बोलती हैं, बस वो है आप। जो ही इंसान गलत काम कर लेता है नफ्स अम्मारा की रगबत पे, तो फिर उसके अंदर से नफ्स निकलता है डांटने वाला, मलामत करता है, शर्म करो, ये क्या किया है, ऐसे नहीं था करना, वैसे नहीं था करना। अब जो शख्स नफ्स अम्मारा की बात पे गलत काम करे, लेकिन नफ्स लवामा की रोक टोक पे फौरन पीछे हो जाए, रिग्रेट फील करे, तौबा कर ले, तो उससे फिर एक नया नफ्स पैदा होता है जिसको नफ्स मुतमईना कहते हैं। कुरान पाक में इन तीनों नफूस का तस्करा है, यहाँ नफ्स अम्मारा का, नफ्स लवामा का तस्करा सूरत क़यामत में है, और नफ्स मुतमईना का सूरत फजर की आखिरी आयतों पे है। आपका मेरा इस वक्त फोकस क्या है? नफ्स अम्मारा पे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी के पेचो ताप को अगर सामने रख कर देखें तो हमारा दिल करता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दें। टिट फॉर टैट, जिसने हमें सताया अब हम उसको जीने का हक भी उससे छीन लें। और कुछ इसी किस्म की कहानियां और बातें पेश करके हम क्या करते हैं? लोगों को सताते हैं। याद रखिए, इंसानों की जिस दुनिया में आप और मैं जी रहे हैं, ये जन्नत नहीं है, यहाँ सब कुछ सब ठीक नहीं होगा, ये सिर्फ जन्नत में होगा। आपका मेरा काम क्या है कि अपने नफ्स अम्मारा के ऊपर पाँव रखें और अपने इर्द गिर्द रहने वालों को स्पेस दीजिए, जिसमें सबसे पहले तो आपके अपने भाई बहन होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मुस्तकिल दरगुजर करते हुए दिख रहे हैं, मुस्तकिल सब्र का एक पैकर बने हुए दिख रहे हैं, और इसी को आगे हम मजीद देखते जाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने भाइयों को ना सिर्फ ये है कि शर्मिंदा होने से बचा लिया, बल्कि उनके ऊपर एहसान किया। तो अल्लाह ताला नफ्स मोमिन को अपनी हालत पर नहीं छोड़ता, यानी मोमिन कौन है जो नफ्स अम्मारा को नफ्स मुतमईना में बदल दे? आम लोगों का नफ्स होगा ऐसा जैसा होता है, लेकिन मोमिन का नहीं होता। याद रखिए तीन चीजें, कोई इंसान पारसा नहीं है, नफ्स इंसानी इंसान को बुराई पे उभारता है, हाँ अल्लाह की खसूसी नजरे रहमत से इंसान बच जाता है। इसी को अल्लाह ने इस आयत में कह दिया, इल्ला मा रहम रब्बी इन रब्बी गफूर रहीम। आप मैं क्या करें इस वक्त, एक दुआ सीखते हैं, नफ्स के शर से बचने की दुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यारी दुआएं जो मांगते थे, उनमें एक दुआ थी, अल्लाहुम्मा फातिर समावाती वल अर्द आलिम अल गैबी व शहादा ला इलाह इल्ला अंता रब कुल्ली शय व मलीका आऊज़ु बिका मिन शर्री नफ्सी। इतना भी याद कर सकते हैं आप, आऊज़ु बिका मिन शर्री नफ्सी व मिन शर्री शैतानी व शिरकी ही وان اقترف على نفسي سوءا او اجره الى مسلم. اے اللہ، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، کھلی اور پوشیدہ چیزوں کے جاننے والے، کوئی معبود برحق نہیں سوائے تیرے، اور تو ہر چیز کا رب یعنی اس کو پالنے والا ہے اور اس کا بادشاہ ہے. اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر اور اس کے جال اور پھندوں سے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اپنے آپ کے خلاف کوئی گناہ کر بیٹھوں. یہ جملہ نوٹ کریں، ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں ہم اپنے خلاف کرتے ہیں. پیچھے سورت یونس میں پڑھ کے آئے، یا ایھا الناس انما بغضکم علی انفسکم، تمہاری بغاوتیں، تمہاری سرکشیاں تمہارے اپنے ہی اوپر پڑیں گی. تو کبھی بھی گناہ کا خیال آئے تو اس جملے کو یاد رکھیے گا. یا پھر اس گناہ میں کسی مسلمان کو ملوث کر دوں تو یہ دعا مانگیے. ترمذی کی روایت ہے 3529، اور یہ صبح شام کی دعاؤں میں بھی موجود ہے الفاظ کے فرق سے، لیکن آج اس نیت سے اس کو پڑھیے کہ اللہ مجھے اپنے خاندان، بھائی بہنوں، سسرال، شوہر بیوی کے تعلق میں، ساس بہو کے رشتے میں، بھائی بچے، جو بھی اے بی سی ڈی ہیں لگی ہیں نا، ہم اس کی وجہ سے ہارتے ہیں. نفس کو دبائیے، میں، میری ذات، مجھے بڑا کرو، میری عزت نہیں کی، مجھے کرسی چھوٹی دی، یہ بہو عزت نہیں کرتی، میری ساس نے میرے لاڈ نہیں دیکھے، بھائی جائیداد کھا گئے، بہنیں جو ہیں یہ کرتی ہیں، ان کے تو مطالبے ہی نہیں ختم ہوتے، ہر جمعے ہر ہفتے آ جاتی ہیں، ہر سال آ جاتی ہیں. یہ جملے، یہ ہے ہماری ارد گرد کی دنیا. کیونکہ رشتوں کی اس جنگ میں اور محبتوں کے اس امتحان میں ہم یہی سیکھ رہے ہیں. آئیے دیکھیے کہ یوسف کا صبر کام کیسے آتا ہے. یعنی اب اگلی آیتوں میں یوسف کا صبر رنگ لاتا ہے. بچپن سے آزمائے گئے، کنویں میں ڈالے گئے، بے قیمت ہوئے، تھوڑی سی قیمت پہ بک گئے، غلام بن کر ایک وزیر خزانہ کے گھر میں آ گئے، وہاں خدمتیں کی لیکن اس کی عورت نے ڈورے ڈال کر بدنام بھی کیا، پھر اپنی سہیلیوں کے ساتھ چالیں چل کر جیل میں بھجوا دیا، اور اس کے بعد آپ دیکھیے جیل میں بے گناہ تک رہے کتنے سال. پھر وہاں ایک قیدیوں سے دوستی ہوئی، اور جب وہ ان کا خواب بتایا اور جب وہ جانے لگے تو کہا کہ میرا تذکرہ کر دینا بادشاہ کے سامنے کہ ایک بے گناہ آیا ہوا، ذرا اس کی فائل کھول کے چیک کر لیں. وہ بھی بھول گیا. وہاں سے کتنے سال کے بعد جب بادشاہ کا خواب ذریعہ بنا تو وہ شخص یوسف کو بلانے آیا، ایک آدھے جملے سے نہیں کہا پڑ گئی میری ضرورت، آ گیا خیال. یہ جملے انا کے ہوتے ہیں، خود کو بڑا کرنے ہوتے ہیں، نفس کی شرارتوں کے جملے ہوتے ہیں. نہیں، خاموشی سے کہا کہ بھائی پہلے میرے اوپر جو مقدمہ ہے اس کی حقیقت کھولیے. پھر بادشاہ نے اس مقدمے کو کھولا، یوسف بے گناہ ہو کر اب باہر آ گئے ہیں بادشاہ. یہ میری انگلیوں پہ میں نے گنے ہیں، یہ 9 عروج اور زوال، یہ یوسف کو آج تک یہاں، یہ جس آیت 54 پہ پہنچے ہیں، یہاں تک پہنچنے سے پہلے 9 قسم کے مختلف ناپسندیدہ حالات، بلکہ نفس کے اوپر بوجھ پڑنے والی چیزوں سے آزمایا گیا. اب کیا ہوا؟ یہ میں نے ساری بات کیوں بتائی؟ ہم کسی کو کچھ ملتا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیسے مل گیا. رش کم آتا ہے، حسد زیادہ ہوتا ہے، بدگمانی زیادہ ہوتی ہے، یہ ہو گیا ہوگا اس وجہ سے کر دیا، یہ ہو گیا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، کوئی سفارش ہو گئی، ہاں یہ رشتہ کیسے ہو گیا، لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے، یہ ہے وہ ہے. ہم لوگوں کا وہ عروج دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے خیال میں ان کو ملنا نہیں چاہیے اور وہ بالکل ڈیزرو نہیں کرتے. اللہ پیچھے کے یہ 9-10 قسم کے حالات دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ ہے اس بارے میں، کوئی چیز اتفاق نہیں ہوتی. لکھیے، حضرت یوسف مصر کے وزیر خزانہ بننے لگے ہیں، کیا یہ اتفاق ہے؟ حادثات نہیں ہیں، یہ اللہ کی تدبیر ہے. اللہ جانتا ہے کہ میرا کون سا بندہ کس قابل ہے. ہیرا بھی عام کچے لوہے کے رنگ میں نہیں ڈالتا جیولر، اس کو پلاٹینیم میں یا سونے میں یا بڑے سے اسکیلٹن میں ڈالتا ہے کہ یہ ہیرا اندر محفوظ ہو. اس کے برعکس آرٹیفیشیل زرکون جیولری ہے تو کچے کچے سانچوں میں ڈالی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے لے کر آئے اور گھر آتے ہی نخ نکل جائے. اللہ کو پتا ہوتا ہے کس کو کہاں جڑنا ہے، کون بندہ کس قابل ہے. حضرت یوسف اس قابل تھے، اس لیے کیا ہوا؟ آئیے سنیے. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں. پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں ذی عزت اور امانت دار ہیں. دو چیزیں نوٹ کیجیے گا، ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی ہے، और आज ये जुमला बार बार बोलूंगी जो पारे के थीम में दे दिया आपको। हर आजमाइश के बाद खैर जरूर आती है, जैसे हर रात के बाद सुबह आती है। अब यूसुफ की जिंदगी की सुबह शुरू हो रही है। इसके बाद आप देखेंगे यूसुफ को कोई डाउनफॉल नहीं मिलेगा। ये 40 साल की उम्र थी या क्या थी, बस लोगों की इब्तदाई जिंदगी दुखों में गुजरती है, आगे बहुत अच्छी गुजर जाती है। कुछ का ऑपोजिट भी होता है, कुछ की रली मिली भी रहती है। यूसुफ की आजमाइशों का दौर पूरा हो गया और अब उनके लिए खैर के रास्ते खुल गए। बादशाह ने कहा इसे मेरे पास लाओ कि मैं इसे अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर लूं। सेक्रेटरी, सीक्रेटरी होता है असल में लफ्ज, जिसका सीक्रेट्स होते हैं, क्लोजर। मैं इसको अपना मुकर्रब बना दूंगा। बादशाहों की जुबान में इसको दरबारियों में वो दरबारी जो बिल्कुल बादशाह के साथ कुर्सी पे बैठता था और वो उसको बैठकर छोटी मोटी बातें साथ से बताता रहता था। और जब बातचीत की तो फिर तो दीवाना ही हो गया यूसुफ का। कहने का, नहीं, सिर्फ सीक्रेटरी नहीं है आप मेरे, इन लदई न मकीन व नमीन, इज्जत और अमानतदार है। ये है किरदार, ये था मेरे प्यारे नबी का भी किरदार। दूर से भी लोग आपसे मरूब होते थे, लेकिन जितना करीब आते उतनी आपकी खूबियां खुलती। हमारा हाल कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जॉब दिला दी, 15 दिन बाद पता चला कि ये बंदा तो कामचोर है, ये तो फलां है, ये तो चोरियां करता है, धोखे निकाल लो इसको। हर महीने मेड तो नहीं बदलती, हर बंदा मेरे से नाला तो नहीं है। इस साल तो इस चीज को आपने अपने लिए एक हुज्जत बनाना है कि मेरे इर्द गिर्द वाले मुझे क्या कहते हैं। पूछिए घर जाके घर वालों को, अकेले में पूछे, प्यार से पूछिए, मोहब्बत से पूछिए, अपनी मेट से पूछिए, सबसे पूछिए, अपनी बहुओं से पूछिए, अपनी सासों से, अपने शौहरों से पूछिए, आप मेरे बारे में क्या है। सच बोले मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं नाराज नहीं होंगी, मैं अब दोबारा गुस्सा नहीं करूंगी। वो कहेंगे जान की अमान, मैंने कुछ कह के मरना। किसी ने कहा कि अपनी बीवी को मैं डांटू, डांट के 10,000 का खर्चा करना पड़ता है, इसने डॉक्टर पे चले जाना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये तो इतनी ऐसी है वैसी है, तो इजी गोइंग हो। अपने साथ रहने वालों की नफ्स पे हाथ ना रखा करें, आपकी मौजूदगी में लोग खुश हों। और मुझे जिस चीज से खुद अपने बारे में घबराहट होती है ना, मुझे देख के लोग घबरा जाए, नए लोग होते हैं जरा ऐसे घबराते हैं। मैं कहती हूँ मैं इतनी खौफनाक हूँ क्या, क्या हो गया आपको, मुझे देख के आप क्यों सीधे हो रहे हैं। अगर आपने खामोशी से तिलावत सुननी थी मेरे से पहले भी सुनते। तो याद रखिएगा यूसुफ के अंदर कुछ था, शख्सियत मजबूत थी और अच्छे बंदों की बड़ी कदर है, ये लिख लें। ये जो आज हमारा धोखा है ना कि पाकिस्तानी या मुसलमान लोगों को जॉब्स नहीं मिलती और हमारे मुल्क के इतने नौजवान धक्के खा रहे हैं उधर है। मैं पाकिस्तान की मिसाल इसलिए देती हूँ कि मेरा उधर से ताल्लुक है, आपको अपने मुल्कों का पता होगा। आम बात है ये हमारे जवानों को जॉब नहीं मिलती, तो ये धोखा है। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना यूनिवर्सिटीज उनको पहले ही रख लेती हैं, डॉक्टर्स हों, वो कोई CA कर रहे हैं कंप्यूटर में, 90% लोगों को अपने ही इंस्टीट्यूट्स में जहाँ से वो पढ़ते हैं जॉब मिल जाती है, क्योंकि खूबी होती है। वो कहते हैं जब खूबी होती है हम दुनिया देते हैं उनको, या फिर अल्लाह कुछ उनको उससे भी अच्छा देना होता है, ये भी याद रखिए आप। मुझे डर बड़ा लगता है कि फौरन लोग नेगेटिव पे चले जाते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की तारीफ कर दूं तो लोग कहेंगे आपने पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर दी, बुराई कर दूंगी तो कहेंगे उसकी क्यों नहीं कर दी। इंडिया का तो नाम ही लेते मैं डरती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का जरा गड़बड़। और जितनी खूबसूरत सिस्टर्स मुझे पूरे अपने इस जिंदगी के पढ़ने पढ़ाने के दौरान इंडिया से मिली है, वल्लाह ही मैं कह सकती हूँ चेहरों पे आपके नेकी लिखी होती है। मुंह पे तारीफ करनी नहीं चाहती इसलिए मैं चुप हो जाऊँ। तुम्हारा कोई झगड़ा किसी मुल्क से नहीं है, हमें तो लोग अच्छे हैं, सब जगह के लोग बेहतरीन है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतें हैं। तो बंदे में खूबी हो, अपने अंदर खूबी लाए। यूसुफ में खूबी थी। देखिए कैदियों का एक कहले पर क्या होता है, एक दफा को जेल में चला जाए अमेरिका में उसको बैड क्रेडिट कह देते हैं, उसको फिर कई साल तक वो चेक करते हैं, वो कहीं जॉब करेगा फौरन जाकर चेक करेंगे कभी ये जेल में तो नहीं गया। यूसुफ को जेल से अल्लाह निकाल कर मिस्र का वजीर खजाना, जो द मोस्ट सेंसिटिव कह लीजिए के हिस्सा होता है हुकूमत का माल, वहां जा रहे हैं। मुसलमान है बादशाह, नॉन मुस्लिम है, यूसुफ मुसलमान है। तो आज आप अपने बच्चों को ऐसा करेक्टर दीजिए, ऐसा किरदार दीजिए, सादिक और अमीन की उम्मती होने का हक अदा करा दें। फिर देखिए दुनिया उनको कहाँ बुलाती है। आज पूरी दुनिया में मिसालें हैं, गैर मुस्लिम लोगों के पास मुसलमान इम्प्लॉयज कितने, उनकी मेहनत की वजह से। पाकिस्तान की एक पूरी जनरेशन इस वक्त नॉर्वे को सपोर्ट कर रही है, मुझे लोगों ने गवाही दी, मुझे तो अभी गई चंद साल हुए ना। वो कहते हैं ये गांव था, बड़े इजी गोइंग लोग हैं वो, ये पाकिस्तानी हमारे भाई हैं जिन्होंने वहां से जाके मेहनत कर करके उसको आज एक इतना खूबसूरत मुल्क बनाया, टैक्स देते हैं, काम करते हैं। आज वो सबसे पहले हमारे देसी ब्रदर्स को हायर करते हैं क्योंकि ये मेहनती होते हैं, रात दिन काम करते हैं। तो असल तो खूबी खूबी है, खामी खामी, इंसान इंसान होते हैं। तो यूसुफ अलैहि सलाम को उसने कहा कि आपको मैं उदा दूंगा। अब यूसुफ क्या कहते हैं जरा देखिए, काला जल नी अला खजाई नील अर्द, यूसुफ ने कहा आप मुझे मुल्क के खजानों पर मामूर कर दीजिए, मैं हिफाजत करने वाला और बाखबर हूँ। यूसुफ ने खुद ओहदा मांगा, क्यों? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी को पता हो कि मेरे में कोई खूबी है, वो काम मैं कर सकता हूँ, दूसरे नहीं कर सकते, तो ऑफर कर देना चाहिए। और दूसरी बात नोट कीजिए, पीछे का ख्वाब, यूसुफ को पता था इस मुल्क पर अब कहत आने वाला है, और कहत के दौरान ये जो फसल उगेगी और ये सारी चीजों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो इसे एक अमल का नुक्ता लिखे कि आपके अंदर जो खूबी होती है तो आप उसको ऑफर कर सकते हैं। हम जब भी किसी से वॉलंटरी फॉर्म फिल कराए ना, तो उसमें दो तीन सवालों में एक ये भी पूछ रहे होते हैं कि आपकी खूबी क्या है, आपके ख्याल में आप क्या काम अच्छा कर सकती हैं, और सही काम करने वाले को सही काम देना यही असल में कामयाबी है। हम कई ऐसे कामों पे ऐसों को लगा देते हैं जो उस काबिल ही नहीं होते, या उन बेचारों में खूबी नहीं। ऐसे जैसे आंख को कभी आप कान का काम दे दें, कभी भी नहीं करेगी, कान को जुबान बना दे, नहीं करेगी। तो अल्लाह ने इंसानों को मुख्तलिफ खूबियां दी हैं। वकज़ालिका मक्कन अली यूसुफ फिल अर्थ, इसी तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क का कब्जा दे दिया। इस पे सोचिए, ये है हर आजमाइश के पीछे खैर होती है, शर्त यह कि किरदार हो, करेक्टर हो, अल्लाह की रजा पे राजी रहे किसी भी तकलीफ के आने पे, और दूसरी बात है अपने किरदार को और अच्छा करते जाएं, कुरान से जुड़ जाएं, हदीस से जुड़ जाएं, तरबिया हो, तज़किया हो, खरा इल्म लीजिए, अल्लाह का कुर्ब लीजिए, अल्लाह उसी दुख से बड़ी खुशी आपको ना दे दे तो आप कभी भी ना मानिए मेरी बात। या तबव्वो मिन्हा हैसु यशा, जगह तो दी थी यूसुफ को जमीन में, यूसुफ को अल्लाह ने जगह तो दी मुल्क में, लेकिन या तबव्वो मिन्हा हैसु यशा के वो जहां कहीं चाहे रहे सहे, हम जिसे चाहें अपनी रहमत पहुंचा देते हैं, हम नेकुकारों का सवाब जाया नहीं करते। यकीन करें इस जुमले पे अगर आप मेरे सामने ना हो तो मैं फूट फूट के रोऊं। अल्लाह की जो सुन्नत इस आयत में दिख रही है ना, इसको सीखने के लिए आपको मजीद वक्त लगाने की जरूरत है। एटलीस्ट 10 साल आप कुरान पढ़ें तो फिर आपको इसमें अल्लाह की वो सुन्नत समझ आएगी कि अल्लाह कभी किसी का अजर ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला ऐसे असबाब दे देते हैं, जिधर मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी बैठो, जो मर्जी करो। आप देखिए कि दुनिया पर तोलती है उन मुल्कों में जाने के लिए, किस लिए? कि रिस्क अच्छा हो जाएगा, जॉब आ जाएगी। हम किसी पे कोई इतराज़ नहीं कर सकते, ना हमें हक है, लेकिन अमूमन बाहर के मुल्कों में लोग क्यों जाना चाहते हैं कि वहाँ जी जॉब्स अच्छी हैं, वहाँ लाइफस्टाइल अच्छा है। फिर वहाँ जाकर देखते हैं कि जितनी मेहनत यहाँ कर रहे हैं, इससे आधी भी अपने मुल्क में की होती तो ज़्यादा फायदा होता। लेकिन जब अल्लाह सुबहान तआला आपसे दीन का काम लेना चाहता है तो वो क्या सबाब पैदा करते हैं, मुझे इसमें वो दिख रहे हैं। अल्लाह तआला आपको वो पासपोर्ट्स दिलवा देता है जिसमें आपके लिए कितनी पाबंदियां आजाद हो जाती हैं। लोग ये पेपर्स और पासपोर्ट्स और ग्रीन कार्ड्स और ब्लू कार्ड्स लेकर रहना चाहते हैं, आप वहां से निकल के या तबव्वो मिन्हा हैसु यशा होते हैं। अल्लाह अपने दीन के काम ऐसे लेता है। तहदीस नेमत के लिए ये बातें दिल से मेरे निकल रही हैं। आज उन मुसलमानों की दुआ के लिए दुआएं किया करें कि जिनको अल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ले जाकर अपने दीन का पैगाम दिलाने के लिए इतने असबाब दे देता है, और ये अल्लाह देता है, बंदे के तो बस में नहीं है। अल्लाह अपने कामों पे कादिर है, बस इस चीज़ के आगे ना चलिए, इससे ज्यादा ना सोचिए, बस ये दुआ किया करें कि अल्लाह हम मुसलमानों को ये सोच दे। हम भी बाहर के मुल्कों में जाएं, लेकिन क्यों जाएं? जैसे यूसुफ गए, हम भी इसलिए जाएं जिस काम के लिए अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को तैयार किया। अपने जॉबें, अपने घर, कपड़े, खाने पीने के लिए तो लाखों लोग बाहर जाते हैं, कितने लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए जाएं? और जाना बहुत चाहते हैं, बेचारे जाते भी हैं, वीजे भी लगवाते, शॉर्ट टर्म भी जाते, लेकिन हर एक के पास असबाब नहीं है। तो अगर अल्लाह किसी को ये सबब दे दे तो उस पर खुश होना चाहिए कि नाराज होना चाहिए? उनकी दुआएं क्या करें कि अल्लाह ताला उनको वहां भी ले जाए जहाँ दूसरे नहीं पहुंच सकते। तो अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ से निकाला, एक कनान नाम के एक छोटे से गांव में पलने वाला बच्चा। अगर यूसुफ को ये सारे 9 किस्म के हालात से ना गुजरना पड़ता तो यूसुफ कहाँ होते? कनान की किसी छोटी सी जगह पे बैठे हुए कोई अल्लाह का नाम ले रहे होते। नबियों की नस्ल थी। खैर तो उनमें बहुत थी। अल्लाह ने उनको मिस्र जैसी उस वक्त की सुपर पावर और एक बड़े मुल्क के अंदर अल्लाह ने इस्लाम को लाना था। आज मिस्र मुसलमान क्यों है, ये है उसका अंदर का रूट कॉज। तो ये जो दुनिया में आपको 100 से करीब ज्यादा मुसलमान दिखे, ये मुसलमानों की ट्रैवलिंग, इनकी हिजरतों और इनकी इन चीजों से मिले हैं। और अभी तो सारी दुनिया में काम करने की जरूरत है, वक्त फुर्सत है, कहाँ काम अभी बाकी है। दुनिया में नूरे तौहीद का इत्मीनान अभी बाकी है, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी का गोल बनाया ही कोई नहीं है, इसलिए हमें फिक्र ही कोई नहीं। आप किसी मुल्क में भी दुनिया में रहें, एक मकसद रखिए कि मैंने लोगों को नफा देना है, और नफे में सबसे बड़ा नफा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, लोगो अल्लाह को एक मान लो, फला पा जाओगे। किसी एक को रब से जोड़ देना, इस्लाम पे ले आना 100 सुरखुंठों से बेहतर है। ये यूसुफ आपको सिखा रहे हैं कि चलो मैं जरा इनके बीच में रहूं, चलूं बसूं। और यहां आपको समझ आएगा अल्लाह ने इनको अजीज मिस्र के घर में क्यों पलवाया। अगर यूसुफ कनान से निकल कर आते, कोई इनके लिए दरवाजा भी ना खोलता, ना इनको शाही अदब अदाब आते। लेकिन अल्लाह ने इनको वो पहले अदब सिखाया। जहां भी काम कराना होता है, अल्लाह पहले वहां के लोगों में आपको रखेगा, थोड़ी देर उनको समझेंगे, फिर काम होगा। यही यूसुफ के साथ हुआ, यही नबी सल्लम के साथ हुआ, यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। क्यों फिरौन के महल में पाले गए? ताकि शाही अदब अदाब सीखे। एटिकेट्स होते हैं, एक पर्सनैलिटी होती है, एक बात करने का कॉन्फिडेंस होता है। अगर आपका एक वजीर आजम जाकर किसी बहुत बड़ी नॉन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जाकर इस्लाम की बात कर सकता है, तो इसलिए कि वो वहां का रेस्ड था, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, उसको इंग्लिश आती थी, उसको देखकर लोग कह सकते थे कि ये बंदा यहाँ के रंग रखाव को जानता है। तो ये जिंदगी के असूल है। वापस आ जाइए, अल्लाह की रहमतों को समेटने के लिए इंसान को किरदार चाहिए। आज पूरे पारे में अपने आप से कहिए, अगर मेरे पे कोई आजमाइश भी आई और मैं फिर भी अल्लाह के करीब नहीं आई, तो तुफ है मुझ पे। फिर याद रखिए, फायदा कोई नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता। वल आखिरत खैरुल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तकून, यकीनन ईमानदारों और परहेजगारों का उखरवी अजर तो बहुत ही बेहतर है। यानी तुमने तो अभी दुनिया की इज्जत देखी है ना, तभी तुमने अभी दुनिया का यूसुफ का अरूज देखा है। जो अल्लाह ने यूसुफ को आखिरत में देने अलैहि सलाम, वो तो फिर वो वहां जाकर देखे जाएंगे लोग। मेरे आज के सफर में अल्लाह के नबी ने यूसुफ अलैहि सलाम को आसमानों पे देखा था। तो ये था एक क्लाइमेक्स। अब आगे स्टोरी कंटिन्यू होती, और ये है अहसनुल कसस, स्टोरी मॉरल, स्टोरी मॉरल्स। अब मॉरल्स में से अब स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है। पीछे पिछले पारे के एंड तक क्या था, भाई कुएं में डाल के आ गए, नाहनो उस्बा होने का दावा था। थोड़ा सा शैतान ने दिल में हसर डाल दिया था भाई से। यहाँ क्या हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्त पे आ गए। उस ख्वाब के तहत जो है नॉन मुस्लिम बादशाह का था, लेकिन सच्चा था, कहता आया मिस्र के इर्द गिर्द चारों तरफ ड्राउट था। उसमें कनान का इलाका भी था जिधर यूसुफ की फैमिली रहती थी अलैहिस्सलाम। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब की ताबीर के दौरान मैनेजमेंट बताई थी ना, कि इतना रख लेना, इतना समेट लेना, इतना खिला देना, आपने बहुत सारा अनाज, गल्ला, ग्रेन उसको सेव करवा दिया हुआ था। गल्ला मिस्र में है, बाकियों के पास नहीं। ऐसे ऐसे ये बात बाहर फैल गई, लोग मिस्र से आकर खरीदने की कोशिश करते, और चूंकि इंसाफ थे, वामफो थे, लोगों को नफा देना चाहते थे, तो यूसुफ ने ऐसे वक्त में कीमतें दुगनी नहीं कर दी। यूसुफ ने कोटा डाल दिया, सदका दिया, एक ऊंट के बराबर जो भी आ जाएगा उसको फ्री दे देंगे। अब ये खबर जब मिस्र की खुशहाली की कनान में पहुंची, तो क्या हुआ, वजाए इख्वत यूसुफ फदखलू अलैहि फारफहुम वहुम लहू मुनकिरून। यूसुफ के भाई आए और यूसुफ के पास गए, तो इसने इन्हें पहचान लिया और उन्होंने इसे ना पहचाना। क्यों? यूसुफ पहचान के ये मेरे भाई हैं, क्योंकि एक तो मोमिन को अल्लाह फरासत दे देता है, दूसरी बात है कि वो सारे इकट्ठे थे और यूसुफ को बेबी थोड़ी थे, 7-8 साल के बच्चे को पता होता है। सवाल ये कि वो क्यों ना पहचान सके, वो कैसे पहचानते कि वो शख्स जिसको हमने कुएं में डाल दिया, वो हमें मिस्र के तख्त पे दिखेगा। यहाँ लिखे, आपके मुखालिफ, आपके दुश्मन, आपसे हसद करने वाले, आपसे जलने कुड़ने वाले तो आपको कहाँ फेंक चुके होते हैं। वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि अल्लाह आपको कोई इज्जत दे सकता है। खानदानों में ये सियासत बहुत चलती है। और दूसरी बात, यूसुफ अलैहि सलाम को जो अल्लाह ने उस वक्त इज्जत दी हुई थी, भाई तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। नहीं पहचान सके। और यूसुफ ने कुछ नहीं कहा। आज का कोई थोड़ा दिला इंसान होता, 911 पुलिस को कॉल करो, शुरते को बुलाओ, पकड़ो, कत्ल के FIR काटो इनके ऊपर। ये नहीं आज हमारे पास सबर, ये नफ्स को दबाते नहीं हम। अपने बदले खुद लेना चाहते हैं, अपने जवाब खुद देना चाहते हैं, अपने सारे मुकदमे अपनी ही कटहरे में डालकर हम दिन रात अपना दिफा करते हैं। याद रखिए, हम अपनी खूबियों के बेहतरीन वकील और दूसरों की खामियों के बेहतरीन जज होते हैं। हम दूसरों को गलत और अपने आप को सही साबित करते हैं। मुंह पे उंगली रख लीजिए, कोई आपको अच्छा कहे, आपको बुरा कहे, आपके बारे में अच्छा कहे, आपको जो मर्जी कह दीजिए, आप अपना किरदार ना नीचा कीजिए। कभी गाली के जवाब में गाली, इल्जाम के जवाब में इल्जाम, और बदतमीजी के जवाब में बदतमीजी ना करें, और सारे मामले को कह दे फविज अमरी अल्लाह। यूसुफ ने पूरी जिंदगी अपना मामला अल्लाह के ऊपर डाला। अब देखिए, कल तक बेचारे थे और आज सारा चारा ही इनके पास है। लिखिए, बेचारों को चारे वाला बना देता है अल्लाह, वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी देने वाले बन जाते हैं। यूसुफ के दिल को कितनी ठंडक पहुंची होगी जब अपने भाइयों को कुछ दिया। वलम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, जब इन्हें इनका इस्बाब मुहैया कर दिया गया तो कहा कि तुम मेरे पास मेरे इस भाई को भी लाना जो तुम्हारे बाप से है। बातों ही बातों में पूछ लिया, क्या तुमने नहीं देखा कि मैं पूरा नाप कर देता हूँ और मैं हूँ भी बेहतरीन मेजबानी करने वालों में से। बस अगर तुम इसे लेकर मेरे पास ना आए तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई नाप भी ना मिलेगा, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना फटकना। उन्होंने कहा, हम इसके बाप को इसके बारे में फिसलाएंगे। नोट कीजिए जुमला, किरदार बोलता है। यूसुफ के जुमलों को देख लें और भाइयों के किरदार को देख लीजिए तो पता लग जाएगा कि बाप के दिल में यूसुफ की मोहब्बत क्यों थी। बाद बनसीब, हम इसके बारे में बाप को फिसलाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे। वकाल अली फितयानी ही अपने खिदमतगारों से कहा कि इनकी पूंजी इन्हीं की बोरियों में रख दो, यानी यूसुफ की सखावत देखिए, पैसे भी वापस कर दिए, गल्ला भी दे दिया कि घर जाकर देखेंगे, खुश होंगे, तोहफे में दे देता हूँ। क्यों रखा? कि जब लौटकर अपने अहले याल में जाएं और पूंजियों को पहचान लें तो बहुत मुमकिन है कि ये फिर लौट आए। ये एक हिकमत भी थी कि वापस तो आएंगे ना ये देने के बहाने, तो ये हिकमत अल्लाह सिखा रहा था उनको कि कैसे किससे डील करना है। जब ये लोग लौट कर अपने वालिद के पास गए तो कहने लगे, हमसे तो गल्ले का नाप रोक लिया गया। देखिए, नेगेटिव बात पहले की है, देने की बात नहीं लेने की, ये भी एक करेक्टर होता है। लिखिए, पॉजिटिव थिंकर जो होता है हमेशा कहता है आधा ग्लास भरा हुआ है, और नेगेटिव थिंकर कहता है आधा ग्लास खाली है तो उसकी बात कीजिए, नहीं है। 10 चीज़ों में से अगर आपके शौहर 9 चीज़ें ले आए हैं तो एक नहीं लाए तो उसका जिक्र भी ना कीजिए। और आप आते ही क्या कहते हैं, टमाटर नहीं लाए। ये अंदाज गलत होता है, ये है नफ्स वाला अंदाज। वमा उबर नफ्स इन नफ्स अल्लामारुम बिसु, ये है नफ्स हमारा वाला अंदाज। इससे रुकिए। कहने लगे, देखिए, हमसे तो गल्ले का नाप रोक लिया गया, अब आप हमारे साथ हमारे भाई को भेजिए कि हम पैमाना भर कर लाएं, हम इसकी निगेबानी के जिम्मेदार हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तो इसके बारे में तुम्हारा बस वैसा ही एतबार है जैसा इससे पहले इसके भाई के बारे में था। इतने साल गुजर गए हैं लेकिन इनका ये जुर्म बाकी मौजूद है। गुनाहों को करके आप भूल सकते हैं लेकिन हालात आपको भूलने नहीं देते। लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम समझदार बाप थे, क्या कहा, फल्लाहु खैरुन हाफिजा वहुवा अरहमुर राहिमीन, बस अल्लाह ही बेहतरीन मुहाफिज है और वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो अपना सरमाया मौजूद पाया जो इनकी जानिब लौटा दिया गया था। कहने लगे, हमारे बाप, हमें और क्या चाहिए, देखिए तो हमारा सरमाया भी वापस लौटा दिया गया। असूलन तो इनको चाहिए था कि इसको रख लेते, वापस करते कि गलती से आ गया, लेकिन उन्होंने इसको रख लिया। ये भी किरदार की एक झलक है इसमें। हम अपने खानदान को रसद ला देंगे और अपने भाई की निगरानी रखेंगे और एक ऊंट के बोझ का गल्ला ज्यादा लाएंगे, ये नाप बहुत आसान है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो इसे हरगिज हरगिज तुम्हारे साथ ना भेजूंगा जब तक कि तुम अल्लाह को बीच में रखकर मुझे कौलो इकरार न दे दो कि तुम इसे मेरे पास पहुंचा दोगे, सिवाय इस एक सूरत के कि तुम सब गिरफ्तार कर लिए जाओ। जब उन्होंने पक्का कौलो इकरार दे दिया तो उन्होंने कहा, हम जो कुछ कहते हैं अल्लाह इस पर निगेबान है। देखिए, याकूब अलैहिस्सलाम ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा था, उस वक्त ये बातें नहीं की थी क्या कि मैं अल्लाह को बीच में जामिन बनाता हूँ, मौत से कमिन अल्लाह। तो यहां से पता चलता है इत्तफाकात नहीं है, अल्लाह खुद ब खुद रास्ते बना रहा होता है। पिछला जुमला याद कीजिए पारे का, कि माँ बाप तकदीर के नहीं तदबीर के साथी होते हैं, बस वो कोशिशें पूरी करते हैं लेकिन तकदीर में जो होता है वो होके रहता है। और दूसरी बात देखिए कि थोड़ा सा स्पेस भी दे रहे हैं कि हाँ तुम ले आओगे लेकिन अगर अल्लाह ने कुछ और सोचा होगा तो ये उनका अल्लाह ताला के ऊपर यकीन और एतमाद भी है। और बहरहाल ये सारी बातें कर दी। लेकिन अब हिफ्से मा तकद्दुम के तौर पर एक नसीहत करते हैं, वकाल या बुनैया ला तदखुलु मिन बाबिन वाहिद। और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बच्चों तुम सब एक दरवाजे से ना जाना बल्कि कई जुदा जुदा दरवाजों में से दाखिल होना, यानी नजरे बद की तरफ भी इशारा है और वैसे भी दुश्मनों की नजरों में ना आ जाना। मैं अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली किसी चीज को तुमसे टाल नहीं सकता। अकीदा देखिए जरा, ये अकीदा बनाए तो अल्लाह की तरफ से रहमतें लूटिए। हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का चलता है, मेरा कामिल भरोसा उसी पर है और हर एक भरोसा करने वाले को इसी पर भरोसा करना चाहिए। यानी साथ साथ काम भी कर रहे हैं और साथ साथ अल्लाह ताला के ऊपर नजरें भी लगा रहे हैं। वलम्मा दखलु मिन खैस व मरहुम अबूहुम, जब वो इन्हीं रास्तों से जिनका हुक्म इनके वालिद ने इनको दिया था गए। यहाँ से देखिए बाप की बात अब मान रहे हैं, अब इनके अंदर चेंज आ गई। पिछले पारे वाला जुमला याद रखिए, बुरे नेक हो जाते हैं और नेक भी बुरे हो जाते हैं, ये भाई नेक हो गए हैं। और पूरे किस्से में आपको सिर्फ इनकी एक ही खराबी दिखी जो पिछले पारे में देखी, भाई के कत्ल की। यहाँ बाप के साथ भी बातें करते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ बाप ने कहा था कि एक ही दरवाजे से ना जाना तो कहा ठीक है, तो इसको तो रिबेलियस नहीं थे, बस बिगड़ गए थे। औलादों को पहचानी है, आपकी किस औलाद के दिमाग में कोई फतूर आ चुका है या कोई हल्का फुल्का सा आपकी बात से डिफर करता है? कोई बात नहीं है, प्यार से मोहब्बत से मुंह में लुकमे डालकर बालों में उंगलियां फेर कर अपने जवान बच्चों को अपने दीन के साथ जोड़ लीजिए। बाप ने उनको स्पेस दी है, बाप ने उनको बुरा बनने में नहीं अच्छा बनने में मदद दी। हम तो ताने दे दे के इल्जाम दे दे के अपने बच्चों को और बुरा बनाते हैं। तो लिखिए बुरे को और बुरा मत बनाइए, आपकी नेकी दूसरे को बुरा ना बनाए। बच्चों में खैर थी, बाप ने कहा कि देखो ऐसे नहीं ऐसे जाना, कहा ठीक है, अल्लाह ने कह दिया कि वो वहां से चले गए। कुछ ना था कि अल्लाह ने जो बात मुकर्रर कर दी है वो उससे इन्हें जरा भी बचा ले। मगर याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में एक ख्याल पैदा हुआ जिसे इन्होंने पूरा कर लिया। बिला शुबा वो हमारे सिखलाए हुए इल्म के आलिम थे, वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते।